लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के पांचवें और छठे पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। सूक्ति ग्रंथ का सार यही है कि यदि मनुष्य सदाचारी जीवन यापन करेगा, यदि वह ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह करेगा, तो वह सुख और शांति में जीवन व्यतीत कर सकेगा। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजो कर रखो। सूक्ति ग्रंथ का तीसरा अध्याय इन्हीं शब्दों से आरंभ होता है। श्रोताओ, हालांकि बुद्धिमानी से जीना किसी व्यक्ति को चिंता मुक्त हो जाने की गारंटी नहीं देता, तथापि यह सफलता की संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देता है। सामान्य ज्ञान का अर्जन, ईश नियमों का पालन तथा विवेकपूर्ण जीवन यापन व्यक्ति को शांति से जीने देता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ के लेखक का आग्रह है कि व्यक्ति प्यार और ईमानदारी को स्वतः से कदापि अलग न करे, बल्कि इन सद्गुणों को वह अपने हृदय पटल पर अंकित कर ले, जिससे वह ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश का पात्र बन सके। श्रोताओं का ध्यान हमने इस ओर भी आकर्षित कराया था कि सूक्ति ग्रंथ में प्रायः वैकल्पिक प्रतिमानों का उपयोग किया गया है। इसमें नकारात्मक कथनों के साथ सकारात्मक कथनों की तुलना कर ज्ञान के बीज आरोपित करने का प्रयास किया गया है। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजो कर रखो, जैसे शब्दों में बुद्धिमान सुलेमान निर्देशों, नियमों और उनके अनुपालन के लाभों को प्रस्तुत करता है। इसमें ईश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देने का परामर्श और ईश्वर के अनुशासन को प्रेम के संकेत रूप में देखने का आग्रह निहित है। ईश्वर के अनुशासन के अधीन रहना मनुष्य की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वह निराशा और हताशा का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वेच्छा से आनंद के साथ मनुष्य ईश इच्छा को ग्रहण करे और ईश्वर के अनुशासन के अधीन रहकर अपना जीवन सुखमय बनाए, ताकि ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश का पात्र बन सके।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय का पांचवां पद समस्त विश्वासियों को संबोधित है, उन सबको जो ईश्वर और पड़ोसी की सेवा में जुटे हैं। ईश्वर किसी पुरुष अथवा किसी स्त्री को अपनी सेवा के लिए नहीं चुनते, अपितु उनके सदाचरण के कारण उनमें प्रज्ञा और विवेक के बीज आरोपित करते हैं, ताकि वे अपने लोगों के समक्ष उचित शब्द बोलने में सक्षम बन सकें। इसीलिए लेखक कहता है कि अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर ही मार्गदर्शन देने वाले हैं। इन पदों में तीन शब्दों का महत्व अहम है। ये शब्द हैं विश्वास, भरोसा और ईश्वर पर निर्भरता। जीवन में सुखी और सफल होने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास होने के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा जरूरी है। जब ईश्वर हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, तब हम न तो ठोकर खाएंगे और न ही गिरेंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। आगे सूक्ति ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 7 से लेकर 12 तक के पदों में लेखक का परामर्श है। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नव जीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। श्रोताओ, अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी और सफल इंसान समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यह संतोष नहीं बल्कि झूठा आत्म संतोष है, जो खतरे को पास बुलाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है, तब उसका विकास थम जाता है। उसका यह नकारात्मक व्यवहार उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि जितना ज्ञान उसके पास है वही काफी है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, जबकि ज्ञान का भंडार तो अपरिमित है। सच तो यह है कि जब व्यक्ति स्वतः पर निर्भर होता है और किसी की परवाह नहीं करता, तब केवल निराशा ही उसके हाथ लगती है। अपने अभिमान में वह विनम्र होना भूल जाता है और जो थोड़ा बहुत ज्ञान उसमें होता है उसी पर गर्व करने के कारण यह भी भूल जाता है कि उसका ज्ञान ईश्वर की देन है। वह मनुष्य के प्रति ईश्वर की उदारता का फल है। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ के लेखक का आग्रह है कि मनुष्य प्रभु पर श्रद्धा रखे तथा सब बुराई से दूर रहे, क्योंकि ऐसा कर ही उसके शरीर को स्वास्थ्य और उसकी हड्डियों को नव जीवन प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति स्वच्छ साफ सुथरा रहता है तो वह बीमारियों से दूर रहता है। उसी प्रकार साफ सुथरा आचरण व्यक्ति के अंतःकरण को स्वच्छ रखता है। उसमें कोई दोषी या कसूरवार होने की शंका नहीं होती और इसीलिए वह चैन से सो पाता है। निर्गमन ग्रंथ के 15वें अध्याय के 26वें पद पर गौर करें, जब इजरायली मूसा और ईश्वर पर भुनभुनाने लगे थे तब प्रभु ने यह आदेश उनके समक्ष रखा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी को ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा को पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाही थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी। तेरे ही अंश है सभी
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को प्रकाशित एक वीडियो संदेश में कारिताज अर्जेंटीना के सदस्यों का अभिवादन किया जो सामुदायिक प्रक्रिया ला कमिनाता में भाग ले रहे हैं। संत पापा ने बुधवार को अर्जेंटीना में कारिताज संगठन में पल्ली धर्म प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवकों को एक संदेश भेजा और ला कमिनाता 2021 के सामुदायिक चरण में खुद आध्यात्मिक रूप में भाग लेने का आश्वासन दिया। यह हर 3 साल में सामुदायिक प्रक्रिया के हिस्सा के रूप में आयोजित एक पहल है और एक ऐसा अनुभव है जो हमें आगे बढ़ाता एवं सामुदायिक विवेक के साधन के रूप में कार्य कराता है। संत पापा ने कहा कि 2021 की यात्रा बाहर निकलने और एक दूसरे को सुनने का अनुभव है और समय एवं परिस्थिति के अनुसार किस तरह अधिक ठोस रूप में प्यार एवं सेवा करने हेतु आत्मपरक करना है। संत पापा ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रभु आपकी यात्रा में आपका साथ दे और कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें। कारितास अर्जेंटीना ने बतलाया कि ला कमिनाता 2 चरणों में सम्पन्न होता है। प्रथम चरण में कुंवारी मरियम और बालक येसु के साथ संत जोसेफ की प्रतिमा की तीर्थ यात्रा की जाती है जिसको हर क्षेत्र में एवं धर्म प्रांत में घुमाया जाता है। जब प्रतिमा को विभिन्न शहरों एवं समुदायों में घुमाया जाता है तो लोगों में आनंद और आशा उत्पन्न होता है। लोग अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और यह एक भाव एवं समर्पण बन जाती है। प्रतिमा को इस समय अर्जेंटीना के तटीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। दूसरे चरण में हरेक समुदाय के भीतर प्रेरित विचार विमर्श करना शामिल है जिसमें प्रस्ताव रखे जाते और प्रयास किए जाते हैं जो चिन्हों को पहचानने में मदद देता है कि ईश्वर हरेक स्थान पर मौजूद हैं और कलीसिया की उदारता में अधिक से अधिक प्रेरित कार्यों को गहरा करना जारी रखते हैं। कारितास अर्जेंटीना ने कहा है कि यह सामुदायिक प्रक्रिया हमें अर्जेंटीना की समस्त कलीसिया, लातिनी अमेरिका और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ एक करती है। संयोजकों ने सभी सदस्यों का आह्वान किया है कि हर प्रार्थनालय, पल्ली क्षेत्र, धर्म प्रांत या राष्ट्रीय दल के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। संत पापा फ्रांसिस ने 25 अगस्त के ट्वीट संदेश में प्रभु से प्रार्थना करने का आह्वान किया है कि हम सच्चाई एवं विश्वास से दूर ना चले जाएं। उन्होंने संदेश में लिखा है, आइए हम प्रभु से मदद की याचना करें कि हम उन सभी चीजों का सुसंगत रूप में और साहस के साथ सामना करें जो हमें सच्चाई एवं विश्वास के अभिव्यक्ति से दूर करता। केवल इसी से हम सच्ची एकता एवं भाईचारा का निर्माण कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सिस्टर अलेसांद्रा स्मेरेले एफएमसी को समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठ परिषद की अंतरिम सचिव एवं वैटिकन कोविड 19 आयोग की प्रतिनिधि नियुक्त किया है। सिस्टर अलेसांद्रा को मोनसिनियोर ब्रूनो मरिया डूपे और फादर अगुस्तिनो जंपीने के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इताली धर्मबहन मार्च 2021 से परिषद के उप सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रही थीं। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संत पापा फ्रांसिस ने आदेश दिया है कि वैटिकन कोविड 19 आयोग की प्रबंधन टीम की रचना की जाए, जिसमें कार्डिनल पीटर टर्कसन परिषद के अध्यक्ष और सिस्टर अलेसांद्रा स्मेरेली एवं फादर फाबियो शरणार्थी एवं प्रवासी विभाग के उप सचिव होंगे। शांति के लिए मासिक प्रार्थना को 27 अगस्त से पुनः चालू किया जाएगा, जिसमें इस माह अफगानिस्तान, हैती और सृष्टि की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। असीसी के धर्माध्यक्ष डोमेनिको सोरेंटिनो ने प्रार्थना का आह्वान किया है और धर्म प्रांतीय आयोग असीसी का मनोभाव इसे आगे बढ़ाएगा। इस प्रार्थना को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की इच्छा पर सन 1986 में आयोजित ऐतिहासिक अंतरधार्मिक सभा की यादगारी में हर माह दोहराया जाता है। विश्वासियों को निमंत्रण देते हुए धर्माध्यक्ष ने कहा है कि हम पुनः अपनी प्रार्थना को अफगानिस्तान से ईश्वर की ओर उठने वाले विलाप और अर्जी के साथ मिलाते हैं, जो इन दिनों अनिश्चितता एवं हिंसा की भयंकर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम अपने हृदय को एकात्मकता एवं स्वागत के लिए खोलते हैं। हम हैती एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों से पृथ्वी हमारे आम घर की पुकार सुने, जो आग एवं पानी जैसी विनाशकारी शक्तियों से नष्ट हो रहा है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, ये घटनाएं हमें चुनौती दे रही हैं, क्योंकि इनके अधिकांश हिस्से जलवायु परिवर्तन एवं देखभाल की कमी से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा है कि वनस्पति का विनाश जानवरों एवं निर्दोष लोगों की मौत से जुड़ी है। बहुत अधिक विनाश के सामने संत फ्रांसिस असीसी का भजन गूंजता है। यह एक जोरदार निमंत्रण है जो हमें याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ अस्तित्व में है वह भाईचारे के गहरे रिश्ते में है। हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना है, हर दिन के कार्य को सम्मान एवं प्यार से करना है, हिंसा एवं शोषण के तर्क को तोड़ना है तथा स्वीकृति और शांति उत्पन्न करना है। धर्माध्यक्ष ने कहा है, आइए हम 27 अगस्त को असहिष्णुता की भावना को मनुष्यों के बीच से समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हम एक साथ करुणावान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें प्रकाश एवं कृपा प्रदान करें, ताकि जो स्वार्थी फायदे की खोज करने के कारण अंधे हो गए हैं, वे जीवन के चमत्कारों और सभी लोगों को भाई बहन के रूप में देखने पर चिंतन कर सकेंगे और सभी श्रेष्ठ जीवों की सुंदरता की रक्षा करना सीख सकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की निराशाजनक रिपोर्ट के मद्देनजर फिलीपींस के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने विश्वासियों से इस साल के सृष्टि के मौसम की पहल में शामिल होने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई पर दुनिया के नेताओं के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। फिलीपींस की कार्तिक कलीसिया में संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विश्व पत्र लाउदातो सी के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है तथा सभी से आग्रह किया गया है कि आने वाले सृष्टि के मौसम में भाग लें तथा स्वस्थ ग्रह एवं स्वस्थ लोगों के लिए कार्रवाई हेतु विश्व नेताओं की एक याचिका पर हस्ताक्षर करें। महाधर्माध्यक्ष ने कहा है कि अध्ययन दिखलाता है कि दुनिया खतरनाक रूप से अपरिवर्तनीय ग्लोबल वार्मिंग के करीब है, जो स्पष्ट रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण हुई है। सिरो मलंकरा कैथोलिक कलीसिया के गुड़गांव के धर्माध्यक्ष मोनसिनियोर जेकब मार बर्नाबास का निधन 26 अगस्त को हुआ। वे 60 साल के थे एवं कुछ समय से बीमार चल रहे थे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।